نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا يحب الله الجهر چھٹا پارا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آیت نمبر 148 سورۃ نساء. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالے, یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے احانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے, یہ ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 148 سے 152, 148 سے 152. اس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت کیوں کی حفاظت ہے. دوسرا لکھیے, دو ٹاپک ہیں اس کے. گندگی کو ڈھک دو اگر سلیم التباہ ہو. ان آیات تعالیٰ نے ایک بہت گہرا اصول دیا اور وہ کیا کہ جب کسی انسان کے اندر اس کے دین یا دنیا کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو شہرت دینا اللہ کو ناپسندیدہ ہے. کسی کا عیب ایسے ہی ہے جیسے ٹریش. انسانوں میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کی برائیاں بھی پتہ چل سکتی ہیں, ہمیں ان کی کچھ شارٹ کمنگز کا پتہ چل سکتا ہے. اسلام ایسے وقت میں کیا معاملہ چاہتا ہے جو گھروں میں ہونے والے ٹریش کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کو لفافے میں ڈالو, زور سے اس کو باندھو اور ٹریش کر دو. ہم میں سے کوئی ٹریش کو کھلا نہیں دیکھنا پسند کرتا اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس ٹریش کو لے کے سارے گھر میں پھیلائے, بلکہ ممکن حد تک ہم اس کو فوراً ڈسپوز کر دیتے ہیں. یہی حال ہے کسی انسان کی برائی کے ساتھ اس کو ڈھکنے کا. جب کسی معاشرے میں لوگوں کی برائیاں عام ہونے لگیں, اور سب سے بڑے افسوس اور دکھ کی بات کہ جب دین کے نام پہ اس کو ممبروں پہ کیا جانے لگا جائے اور اللہ کے نبی کے ممبر کو صرف ذاتی گرج اور غصے کی دلیل بنا لیا جائے اور صرف کسی ایک مسلک یا کسی ایک انسان کو لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو عام کر دیا جائے, ایسے دین سے پھر خیر نہیں پھیلتی بلکہ فتنہ ہی پھیلتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تم اسے بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو, اس لیے کہ معافی بڑی خوبصورت ہے. ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا اور سب سے پہلے کہنے والا سوچے, کیا میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بوجھ تو نہیں رکھا ہوا؟ یہ بوجھ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف نہ کرنے کا بوجھ. آج کے دور میں بیماری, بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور شوگر اور نہ جانے کیا کچھ ہے. یاد رکھیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسے گرج پال لیتے ہیں, کچھ ایسے غصے اور گلے پال لیتے ہیں کہ جو بعد میں پھر بیماریوں کی صورت میں آتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے. میں آپ کو چند سیکنڈ دے دیتی ہوں, سوچ لیں خاندان کے لوگ, ساتھ رہنے والے لوگ یا کوئی بھی شخص جس نے آج تک آپ کو کسی موقع پہ دکھ دیا, تکلیف دی, ستایا, آپ پہ الزام لگایا, آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا, آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہونے دیا, آپ کی جاب چلی گئی, اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. شب قدر کی راتوں میں یہ دعا کثرت سے مانگیں گے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھے بھی معاف کر. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں. یہ عظیمت کی راہ ہے. اور جو بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. ہاں اجازت ہے, برابری کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں, کر دیجئے, لیکن ایک بدلہ آپ لیں گے اپنا کتنا کو لیں گے, اور ایک وہ بدلہ جو اللہ لے گا. اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا اور اس نے اپنی روش نہیں چھوڑی تو پھر اس سے بدلہ اللہ لے گا. آپ اپنے کام اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیجئے اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لیجئے. دوسری بات ان آیات میں جو تھی وہ کیا تھی, کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا. یہ وہ مضمون ہے جو تیسرے پارے میں بھی گزر چکا, اور وہاں ایک جملہ میں نے بولا تھا کہ تفریق انبیاء کفر ہے. तफजील अम्बिया जायज़ है। यहाँ भी वही बात है, बस लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये कहने लगते हैं कि कुरान की बात तो मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे। आप कोई मसला किसी को बताएं, वो कहता है ये बताओ ये कुरान में आया कि हदीस में आया। भाई आपको इससे क्या लगे? नहीं, कुरान में है तो फिर तो अल्लाह की तरफ से, फिर तो लाजिम है, और अगर हदीस है तो ना माने। ऐसे तमाम लोगों को ये आयतें जो हैं हुज्जत बन रही हैं कि जिसने ये कहा कि मैं अल्लाह की बात मानूंगा और रसूल की नहीं मानूंगा, फिर वो शख्स जो है अपने आप को सोच ले कि वो कहाँ पे खड़ा होगा। और अल्लाह ताला हमें पूरे दीन को मानने वाला बना दे, तो फर्कों की बजाय एक पूरा दीन मुकम्मल माना जाए। बस लोग माजी की शख्सियात को पूछते रहते हैं लेकिन हाल की शख्सियत का इनकार करते हैं, क्योंकि माजी की शख्सियत को पूजना अकीदत की बुनियाद पे होता है। उसके साथ चंद रसूमात होती हैं, उसका उर्स मना लिया, उसको मना उसकी खुशी देख ली, उसकी बरसी मना ली, लेकिन जो हाल की शख्सियत होती है ना, वो आपका हाल बदलने की दावत देती है। इसीलिए वो लोग जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी नस्बतें रखते थे लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लम आए तो आपके दुश्मन हो गए, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ऐसे इम्तिहान में कामयाब करे। आपसे अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह को दिखा दे, बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ फरमा दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सरीख दलील इनायत फरमाई, और इनका कौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर कोहे तूर ला खड़ा कर दिया और इन्हें सजदे का हुक्म दिया, और इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज न करना, और हमने इनसे सख्त से सख्त कौल और इकरार लिए। आयत नंबर 153 से 154। इनका उनवान है, जो दलील से ना माने उनके सर पर पहाड़ भी खड़ा कर दो तो ना मानेंगे। इन आयात में एक ऐसे मोजज़े का जिक्र है जो ख़ास तौर पे बनी इसराइल के बारे में है। बनी इसराइल ने बहुत सालों की गुलामी सही थी, फिरौन की गुलामी थी। चाहते थे कि अब हमें कोई एक ऐसा दीन मिले जो हमारी आज़ादी को जाहिर करे और हम अल्लाह की गुलामी करें, क्योंकि इंसानों की गुलामी इंसान को बोझल करती है और अल्लाह की गुलामी इंसान को हल्का फुल्का करती है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की ये दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, कई साल के जिहाद के बाद फिरौन के साथ मामला निपटा, अल्लाह ने उसको डबो दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ वादी ती में पहुंच गए। जब वादी ती में पहुंचे, अब हुक्म ये था कि चलो आगे एक बस्ती है जिसको आज़ाद करवाना है, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में मालका नाम की एक कौम मुल्क शाम पे काबिज हो चुकी थी। वादा पहले ही अल्लाह ने दे दिया कि फतह होगी, तुम चलो और वहां जिहाद करो। इस वक्त ये ढीले पड़ गए, इनका तस्करा पीछे गुजर चुका है। अब अल्लाह ताला ने इनको सजा देना चाही इनकी इस बात की, और असल में ये एक तरबियत का मरहला था कि वो लोग जो फिरौन की गुलामी में रह के जिनके जमीर मुर्दा हो चुके थे, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को सहरा नशीन करवाना चाहता था और उनकी तरबियत करना चाहता था। अब वो वक्त आ गया था कि इनकी रहनुमाई के लिए किताब आए। 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए, वहां अल्लाह ताला से रहनुमाई पाई, तौरात लेने गए थे, पीछे से इन्होंने बछड़े को बना लिया। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियां उठा के वापिस आए, वो मामला रफा दफा हुआ, इन्होंने माफी मांगी, कत्ल हुआ, सब काम हो गए। अब मुतालबा था कि इस तौरात को माना जाए। जब तौरात के अहकामात इनको सुनाए गए, जो आज भी 10 कमेंडमेंट के तौर पे मारूफ हैं, और मारूफ वही बातें थी जो आज भी है, अल्लाह को एक मानने से लेके माँ बाप के हकूक से लेके दूसरी बातों की तरफ, जब इन्होंने ये बातें सुनी तो एकदम कहने लगे कि ये तो बड़ी मुश्किल किताब है, हमने तो सोचा था ये बड़ी आसान होगी। बस इनका ये कहना था कि कोहे तूर अपनी जगह से उठा और इनके सरों पर मुअल्लक हो गया। ये वाक्या हुआ, ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, हमारा ईमान है, हम मौजज़ों पे यकीन रखते हैं कि ये हुआ। जब कोहे तूर को अपने सर पे उठता देखा तो फौरन डर गए और सजदे में चले गए, और एक आंख से ऊपर भी देख रहे थे। इस आज भी यहूद जो सजदा करते हैं, रफ़ा अज़ाब का सजदा कहा जाता है, फौरन माफी मांगी, नहीं 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 हम मानेंगे, हमें तौबा करते हैं। और इस तरह जब कोहे तूर वापस हटा, कुछ अरसा अमल किया और फिर पलट गए। उनके ऊपर तो कोहे तूर खड़ा था, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर तो रब अपनी मौजूदगी को साबित करता है। आज भी वो लोग जो दलील को नहीं मानते, वो बड़े से बड़े मोजज़ों को भी नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने कोहे तूर के दामन में एक गैर मामूली वाकया पेश कर दिया और ये बता दिया कि वो लोग जिनके दिल मुसलमान नहीं होते, वो अपने सरों पे पहाड़ को खड़ा देख के भी नहीं मानते। आज पुलिस मैन को देख के हमारी स्पीड कम हो जाए, हम पुलिस मैन को देख के एक बेल्ट सीट बांधने लगे, हम पुलिस मैन को देख के रेड लाइट पे रुकने लगे और उनके स्टॉप साइंस पे हम रुकने लगे, अल्लाह के रेड लाइट्स पे क्यों नहीं रुकते? फिर हमारी रफ्तार कम होके स्लो डाउन क्यों नहीं होती? और ये अल्लाह का गार्ड होना, ये क्या है? ये तकवा है। तकवा अंदर का चौकीदार है, जो अंदर से रहनुमाई करता है तो बंदा बुरे कामों को छोड़ के नेकियों के काम करने के लिए तैयार होने लगता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को तकवा वाला बना दे। फबिमा नक़दिहिम मीसाकहुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, ये सजा थी बसबब इनकी अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूं कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, इसलिए ये कदरे कलील ही ईमान लाते हैं। और इनके इस कुफर के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बुख्तान बांधने के बायस और यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया न सूली पे चढ़ाया, बल्कि इनके लिए ईसा का शबी बना दिया गया। यकीन जानो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। इन्हें इस बात का कोई यकीन नहीं बजुज तहमीनी बातों के, यानी अंदाजे लगाने वाली बातों के, अमल करने के इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठाया और अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। ये थी आयत नंबर 155 से 158। इनका उन्वान है इनके जराइम की फहरिस्त बड़ी तवील है। किनके? बनी इसराइलियों के। अल्लाह ताला ने यहूद पर किताब उतारी, आसमान से हिदायत आए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और यहूद की जितनी बातें हमारी किताबों में पेश की जाती हैं, अगर देखा जाए तो ये हमें आईना ही तो दिखाया जाता है। अल्लाह ताला ने यहूद को आसमानों से रहनुमाई दी थी, आज हमें भी दी। दुनिया में कोई हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा दे तो हम उसका कितना शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाता है तो बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने भी किया और आज हम भी करते हैं, कुछ हिस्से को भुला दिया और कुछ हिस्से को बदल दिया। इन आयतों के हिस्से का ये भी टॉपिक लिख सकते हैं साथ, सेकंड टॉपिक, ज़ेली टॉपिक जो होता है कि कुछ हिस्से को भुला दिया, कुछ को बदल दिया। जब कौमों का ये हाल होने लगे ना, तो फिर वो हक की दावत देने वालों को बर्दाश्त नहीं करते, और होता क्या है कि जो बंदा अल्लाह की तरफ बुलाए उसको तकलीफ़ देने लगते हैं, और सब कुछ करके वो ये सोच लेते हैं कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम बख्शे जाएंगे। हमारे लिए इस हिस्से में से अमल की बात यही है कि जैसे कौमें अल्लाह के नबियों के कत्ल पर दिलेर हुई और सब कुछ करके भी अपने आप को दीनदार कहने लगीं, हमें अपने रवैयों को चेक करना है कि दीन और दीनदारों के साथ हमारा क्या मामला है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह तू हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। आगे देखेंगे, वइम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में एक भी ऐसा न बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क्यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीजें इनके लिए हलाल की गई थी वो हमने इन पर हराम कर दी इनके जुल्म के बायस और अल्लाह ताला की राख से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस, और इनमें से जो कुफार है हमने इनके अलमनाक हजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें से जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं और जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और जकात के अदा करने वाले हैं और अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हम बहुत बड़े अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन्हीं लोगों में कर दे। ये थी आयत नंबर 159 से 162। इसका उनवान है मौत, फिर स्लैश डालेंगे आप या डैश, मस्नूई पर्दों के छटने का नाम। इन आयात में एक बात की खबर दी गई, और वो क्या है कि वो लोग जो दुनिया में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, या तो वो अपनी मौत से पहले और या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले एक बार अल्लाह के नबी को ज़रूर मानेंगे। देखा जाए तो दुनिया में जब लोग होते हैं और कोई दुनिया से जाता है तो हम क्या कहते हैं कि फलां की आँखें बंद हो गई, कितना मारूफ जुमला है। हालांकि हकीकत क्या है कि आंखें उस दिन खुलती हैं, आंखें तो आज हमारी बंद हैं। जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो इंसान के दिल से तासुबात के सारे पर्दे छट जाते हैं, मुफादात के सारे पर्दे छट जाते हैं, और खुशफहमियों की सारी धुन जो है वो छट जाती है, और जो उसका असल मुकाम होता है वो उसको नजर आने लगता है। अक्लमंद वो शख्स है जो दुनिया में ही इन पर्दों को तार तार कर दे। जितना ईमान और तकवा आपके दिल के अंदर बढ़ता जाएगा, उतने ही आपको अपने गुनाह साफ दिखते जाएंगे। यहूद का तस्करा है, अल्लाह ताला ने उनको कुछ गुनाहों से रोका था जिसमें एक सूद भी था, लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया में आज के मौजूदा सूद के निज़ाम के मूजद और इजाद करने वाले यहूद हैं। बैंकिंग सिस्टम जितना इजाद हुआ और इंग्लैंड से ही ये शुरू हुआ था सिलसिला, ये यहूद की पैदावार थी। ये कैसे होता है कि अल्लाह की चुनी हुई एक कौम उस बात को जिसको अल्लाह की किताब में हराम करार दिया जाए वो उसको इजाद करने लगे? ये तभी होता है जब लोग किताबों को सिर्फ वज़ाइफ की किताब तो मान लें, सवाब की बात तो पढ़ लें, लेकिन उसको रहनुमाई की किताब ना बनाएं। और जब कोई गिरोह अल्लाह के दीन की बजाय अपने खुद साख्ता दीन को पसंद करने लगे तो ऐसे लोग फिर ऐसे काम करने से नहीं चूकते। लेकिन इन सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हक को पहचानते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे, कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को पहचाना। आज के दौर में भी कई ऐसे लोग होंगे। ये अलग बात है कि हमें नजर ना आए, लेकिन अल्लाह का मामला बंदे के दिल के साथ है। इसलिए किसी एक इंसान को अपॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी है। इवन आपके सामने कोई यहूदी या नसरानी मर भी जाए तो आप उस शख्स को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी है, क्योंकि आपको नहीं पता और मुझे नहीं पता कि उसका दिल का मामला क्या था। हो सकता है उसने तौबा की और अपना ईमान छुपाया हो। हमें तो फिक्र इस बात की करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहन। अब उम्मत मुस्लिमा की तरफ जो वही हुई उसका तस्करा है। यकीनन हमने आपकी तरफ इस तरह वही की जैसे नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इनकी औलाद पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक्यात हमने आपसे बयान किए और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया। हमने इन्हें रसूल बनाया, खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों को कोई हुज्जत और इल्जाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर न रह जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। यह है आयत नंबर 163 से 165। इनका उनवान है रसूल इत्मामे हुज्जत के लिए। अल्लाह ने रसूलों के जरिए हुज्जत तमाम की। अगर रसूल ना आते, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, आप अगर वाकई वो चीज़ सोच सकें जो मैं इस वक्त अपने जहन में रखती हूँ, एक लम्हे के लिए हम सब सोचें कि अल्लाह कोई रसूल ना भेजता, दुनिया का नक्शा क्या होता? मेरा ख्याल है कि दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। रसूल जो है ये लोगों को नफ्स के तकाज़ों से रोकने वाले और बांधने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे ना कि रसूल पुलिसमैन है, ये जुमले से शायद आप इतने मोटिवेट नहीं हुए थे। आप ये सोचें कि अगर किसी मुल्क में पुलिस ना हो तो क्या होगा? एक दिन के लिए कोई हुकूमत ऐलान कर दे कि आज कोई पुलिसमैन नहीं, आप कोई अंदाज़ा कर सकते हैं क्या होगा? मैंने तो देखा है कि पुलिस होने या ना होने की बात तो दूर की बात है, कभी कभी बिजली जाती है या कोई डिजास्टर आता है या कोई हरिकेन, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जो वो ख़त्म हो जाती है और पुलिस के सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को पकड़ का डर नहीं रहता, जो इलेक्ट्रिक अलार्म्स होते हैं वो काम करना छोड़ते हैं, और बावजूद इसके कि इंसानों की कसरत जो है वो उस वक्त हलाकत का शिकार हुई होती है, लोगों की बंद दुकानों के शीशे तोड़ के चोरियाँ कर लेते हैं, इज्जतें लुट जाती हैं, घरों में लोग बेचैन हो जाते हैं, इंसान तो इतना बेहिस होता है। तो सोचिए कि जहाँ जाहिरी पुलिस का रब्ता कटने से जुराइम का ये हाल होने लगे तो फिर रसूलों के ना आने से क्या होता? रसूल हमारे मुहसिन, ये भी इसका टॉपिक आप लिखेंगे, रसूल हमारे मुहसिन। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जन्नत और जहन्नुम बनाई, दुनिया में आज़ाद कर दिया कि जो चाहे करो, वक्ती तौर पे कमरा इम्तिहान में भेज दिया, लेकिन हम में से हर एक अल्लाह की निगाहों में कि अच्छा करते हैं या बुरा, हम में से हर एक अपनी जन्नत या अपनी जहन्नुम बना रहा है। अल्लाह के रसूलों ने हमें जन्नत के नक्शे में रंग भरना सिखाया और जहन्नुम से बचना सिखाया। हर दौर के नबी की एक ही दावत थी, लेकिन अल्लाह की मदद हर नबी को मुख्तलिफ रंग में पहुंची, और आज भी यही सुन्नत है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाएगा और अल्लाह के नबियों वाला काम करेगा, अल्लाह उसको उसके हालात के मुताबिक मदद देगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अल्लाह की कितनी मदद को तलब करते हैं। आप अपने घरों में दीन लाना चाहती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह आपकी कितनी मदद करे। आप अपने इदारों में दीन लाना चाहते हैं, ये सरासर आपके हाथ में कि अल्लाह आपकी कितनी मदद करे। आप अपने बच्चों में दीन लाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह की मदद मशरूत है। لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون। जो कुछ आपकी तरफ उतारा गया और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला गवाही देता है, इसे अपने इल्म से उतारा है और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह ताला तौरे गवाही काफी है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, यकीनन वो गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज हरगिज न बख्शेगा और न इन्हें कोई राह दिखाएगा बजुस जहन्नुम की राह के, जिसमे वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। रसूलु बिल हक मिन रब्बिकुम, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है वो हर चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह तआला दाना और हिकमत वाला है। ये थी आयत 166 से 170, 166 से 170। इसका अनवान है हक आ गया है कबूल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस किए गए तो उस वक्त यहूद जो थे वो दुनिया में दीनदार तबके के नाम से मारूफ थे। अरब वाले भी और इर्द गिर्द के जो लोग थे वो उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। नतीजा क्या हुआ कि उनकी शोहरत थी दीन के नाम पे। अल्लाह के नबी का आना उनके लिए खुशी की बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात को खुशी बनाने की बजाय तकाबुल की नफसियात का शिकार हो गए और ये सोच लिया कि अगर हम इस नबी को मान जाएंगे तो हम जो मजहब की गद्दियों पे बैठे हैं हम उतार दिए जाएंगे। कल ये सोच यहूद की थी, आज ये सोच हर उस दीनदार शख्स की हो सकती है जिसने दीन को अपने घर की मेराज समझाओ। जो जाहरी दीनदारी का एक रोब तो लोगों पे तारी करता है, हर नए आने वाले दीन के नुमाइंदे को वो अपने खिलाफ एक हुज्जत समझ के या अपना मुखालिफ समझ के लोगों को उससे रोकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग फिर उस शख्स से नहीं रोकते, वो अल्लाह के दीन से रोकते हैं। अल्लाह का दीन वुसअत कल्बी सिखाता है। वो शख्स जो अपने दिल की खिड़कियां खोल ले वो अल्लाह की इस पुकार को सुन लेगा, और ऐसा शख्स हमेशा लोगों को हक की दावत देगा, न कि इंसानों और इदारों और मसलकों और कौमों की तरफ। आप अगर इस जुमले को लिख लें कि हर दिन हम देखिए कि हम किसी न किसी नाते से इस बात को पढ़ते हैं, मसलक इख्तलाफ। यहूद जो थे ये भी एक फिरका था। यहूद जिसके पास अल्लाह के नबी भेजे गए वो उस दौर का एक दीनदार मसलक था। उन्होंने अल्लाह के नबी को क्यों झुठला दिया? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लिहाजा हर दौर में एक पुकार होती है सच्चे दीन की और दूसरी पुकार होती है अपने नाम के दीन की। यहूद ने अपने रवैये से ये साबित कर दिया कि जो लोग हमारे मसलक से आएंगे हम उनको मानेंगे। अंजाम क्या हुआ? बस यही है आज के लोगों के लिए, जिसने हक को सीने से लगा लिया इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको बाकी रखेगा। और फतेह मक्का की सूरत में वो हकाम हो गया था कि कुल जाल हक का वजाहक अल बातिला इन्नल बातिला का नदहू का। अल्लाह ताला हमें हक के साथ निस्बत जोड़ने वाला और हक को मानने वाला बना दे। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक, अहले किताब अपने दीन में गलूफ न करो, हद से ना बढ़ जाओ और अल्लाह पर बजुज हक के और कुछ ना कहो। मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा है, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया गया और उसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह ताला को और उसके सब रसूलों को मानो और न कहो कि अल्लाह तीन है, इससे बास आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह ताला इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो, और उसके लिए वो सब कुछ है जो आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला काफी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई तंगो आर नहीं होगी या तकब्बुर और इनकार हरगिज नहीं हो सकता, और न ही मुकर्रब फरिश्तों को। इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा कर देगा। बस वो लोग जो ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए इनको इनके आमाल का पूरा पूरा सवाब अता करेगा और अपने फजल से इनको और ज्यादा देगा, और जिन लोगों ने तंगो आर और सरकशी और इनकार किया इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह ताला के कोई हिमायती और मदद करने वाला न पाएंगे। या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानिब वाज़े और साफ नूर उतार दिया। ये थी आयत नंबर 171 से 174, 174। इनका उनवान है शिर्क और शख्सियत परस्ती। इसके आगे स्लैश डालेंगे आप और लिखेंगे गलूफ का नतीजा। गलूफ क्या होता है? कि दीन में किसी चीज का जो दर्जा हो उसको उसके दर्जे से या घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। मसलन अल्लाह ताला एक बंदे को बाप के बगैर पैदा करे और लोग ये कह दें कि ये खुदा का बेटा है, अल्लाह ताला किसी को ज़रा आला मुकाम दें तो लोग उसका मुकाम इतना बढ़ा दें कि उसको इंसानी ना माने। यानी दुनिया की चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने दूर करने का हुक्म दिया तो उसकी वजह से रहबानियत पैदा कर दी जाए। नसारा का ये मसला था। अभी तक हम जो तनकीद पढ़ते आए वो अमूमन यहूद पे थी, यहाँ से आगे आप देखेंगे कि नसारा के अकायद पे तनकीद है। यहूद ने नबियों से दुश्मनी की और उनको कत्ल तक कर दिया। नसारा ने नबियों से मोहब्बत की और गलूब के नाम पे उनको इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे उनको अल्लाह ताला का बेटा करार दिया। ऐसे ही तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ रोकते हैं और आज उम्मत मुस्लिमा को सबक सिखाया जा रहा है कि तुम अपने नबी के साथ क्या मामला करते हो। अफसोस की बात, दुख की बात यह है कि लोग आज अल्लाह के नबी के नाम पे मोहब्बत के दावे करने वाले, आपके सामने अपने अल्फाज के गुलदस्ते पेश करने वाले, लेकिन आपके मुकाम को इतना बढ़ा देते हैं कि बाज़ लोग तो आपको अल्लाह का बंदा भी नहीं मानते, वो बशरियत से नूरियत के दर्जे पे ले जाते हैं। कुरान पाक में कई बार ये नुक्ता आता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बशर बनाया लेकिन मोहब्बत के नाम पे गलूब करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मोहब्बत के नाम पे होता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे कोई चीज़ किसी के लिए जायज़ नहीं हो सकती। मसलन अगर आप देखें कि कुछ ऐसी महफिलें होती हैं जहाँ अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में दुरूद पढ़े जाते हैं, सलाम पढ़े जाते हैं, और उसमें इतना मुबालगा किया जाता है कि जिसको सुन के वाकई लगता है कि ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। और ऐसे ही मौक़ों पे अगर जमात की नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज अदा नहीं की जाती। बाज़ दफ़ा इन रस्मों को परफॉर्म करने वालों के चेहरे, मोहरे, उनके हाल हुलिये सुन्नतों से बिल्कुल दूर होते हैं। जिस तरह आप खाना पकाते हुए अगर उसकी रेशों को बिगाड़ देना, मिसाल दूंगी कि आप खाना पकाते हैं, अमूमन खवातीन जो घर में खाना पकाती हैं उसी पे कयास कर लीजिए कि आप एक चम्मच नमक डालती होंगी, एक चम्मच मिर्चें डालती होंगी, लेकिन उसमें आप 1 किलो गोश्त डालती होंगी, 1 किलो सब्जी डालती होंगी। ज़रा रेशो को बदल दीजिए, आप मिर्चें 1 किलो डाल दें, नमक आधा किलो डाल दें और गोश्त चले एक ही रहने दें, क्या वो खाना काबिल रहेगा खाने के? वो खाना फीकेगा। इस तरह जैसे हम अपने खानों के बीच में कोई 19-20 करते हैं तो टेस्ट बदल जाता है ना, इसी तरह अल्लाह के दीन के अंदर 19-20 करने से दीन का टेस्ट बदल जाता है। मैंने लोगों को इतना पिकी देखा है कि चाय नहीं पीते, नहीं ये ज़्यादा पक गई है, हम कम पकाने के आदी हैं, इसमें पत्ती ज़्यादा डल गई है, इसमें दूध ज़्यादा है, ये चाय कच्ची रह गई, ये पक्की रह गई। वो लोग जो एक चाय अपने टेस्ट से हटके नहीं पीते, वो उस दीन को कैसे कबूल कर लेते हैं जो लोगों ने अपनी मर्जी से बदल दिया। आज उम्मते मुस्लिमा के 50% लोगों के हाथ में जो दीन है वो यही इजाफों वाला दीन है, यही गलूब होता है। आप अल्लाह के नबी का नाम लें, गश पढ़ेंगे, हाल पढ़ जाएंगे। आप नातें पढ़ता देखें, आपको लगेगा इससे बढ़ के आशिकाने रसूल कोई नहीं। आप उनको दीन के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में बातें करता देखें, आपको लगेगा कि हमारा तो कोई अल्लाह के नबी से ताल्लुक ही नहीं, हम तो हैं ही मुनाफिक। लेकिन जब सुन्नतों की बात आती है तो बात बदल जाती है। इस मौके पे आपको एक छोटी सी बात कहूंगी, शायद आपको याद रहे ये कोट वर्ड और आप उससे फायदा उठा सकें, कि नबी की जात के साथ साथ आपकी बात से मोहब्बत करनी है। अल्लाह की नबी की जात से मोहब्बत अगर जन्नत में जाने की दलील होती ना, तो सबसे ज्यादा इसका हकदार अबू तालिब था, जिसने सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत में गुजारी और आपको अपने बेटे की तरह पाला, हालांकि आपका चचा था, लेकिन आपकी बात से मोहब्बत नहीं की। और अल्लाह के नबी की जात से मोहब्बत अबू लहब ने की थी, कि जिस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैदा होने की खबर मिली तो सुवैबा नाम की लौंडी को आजाद कर दिया कि तूने आज मेरे फौतशुदा भाई के घर में बेटे की खुशखबरी दी, जा तू आजाद है। इतना खुश था, खुशियां बांट रहा था, लेकिन जिस दिन उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की दावत दी तो कहने लगे मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्क क्या था? जिस दिन पैदा हुआ था तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, वो एक खानदान का बच्चा था, लेकिन जब उसने अल्लाह की बात की तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया था। अगर जन्नत मिल जाती अल्लाह के नबी से मोहब्बत पे तो अबू लहब कभी जन्नत से बाहर ना रहता। उसको जन्नत नहीं मिली, उसकी वजह क्या है कि वो शख्स अल्लाह के नबी की बात से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी की जात से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, कोई इसके बगैर जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ आपकी बात से भी मोहब्बत करनी है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात इस हिस्से में बहुत ही काबिल गौर है और वो क्या है, इबादत से इनकार। अल्लाह ताला कहते हैं ना तो ईसा को अल्लाह की इबादत से इनकार था ना फरिश्तों को। हम देखें कि क्या हमें तो अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं है? आम हालात में हम इबादत करते हैं, लेकिन जरा अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं अब मैं यहाँ नमाज पढ़ूँ, अब मैं इस जगह नमाज पढ़ूँ, अब मैं शादी हॉल में से उठ के भला सबके बीच में नमाज पढ़ूँ। ये है यस्तन के, ये आर होती है, लो अब मैं यहाँ अल्लाह का नाम लूँ। मशरिक में थी तो ठीक थी, अब मगरिब में आके भी मैं ये काम करूँ, ये मुश्किल है। तो अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इबादत का इनकार कर दे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाही वातसमू बिही, बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और अपने फजल में जगा देगा और इन्हें अपनी तरफ से राह रास्त दिखा देगा। लोग आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें किलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इस बहन के लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा, और अगर इसके औलाद ना हो, बस अगर बहनें दो हों, तो इन्हें कुल छोड़े हुए तरके का दो तिहाई मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल दो औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फरमा रहा है, ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। ये थी आयत नंबर 175 से 176। इनका उन्वान है, अल्लाह ने हर मामले में रहनुमाई की। और यहाँ जो आयत 175 है, ये है असल में वो आयत जो पूरी सूरत का थीम था। हर सूरत के एंड पे आप एक थीम आयत देख रहे हैं। इस आयत का थीम क्या है? किफामल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वा तसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। इस सूरत में ज्यादा नसारा के अकायद पे चोट थी। सूरत बकरा के अंदर यहूद के अकायद पे चोट थी। हम सूरत फातिहा में एक दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने उसके जवाब में हमें यहूद की कहानी भी सुना दी और नसारा की भी सुना दी, और अब यहाँ कह दिया कि वाकई सच्चे दिल से सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो तो ये काम कर लो, आमनु बिल्ला वा तसमु बिही, बस तो अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पे ले जाएगा। यहाँ तक ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब था। अब यहाँ से आगे कुरान पाक का वो हिस्सा शुरू होगा जो उम्मत मुस्लिमा को शरीयत दी जा रही है।